राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 31 मई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज क्या सुना मैं
प्रत्यादेश के मानस तू योगी संशुद्ध कलुष है अनेक जन्म संसिद्ध सतो जाति पराम गति। हरिगिरि जी महाराज बोल रहे हैं उसके विषय में आप बोलो।
मानस तू योगी संशुद्ध कलुष अनेक जन्म संसिद्ध सतो जाति पराम गति।
यही ना।
इसे पहला श्लोक कौन सा है?
पूर्वाभ्यास में तेने ही वह रियते यशो पी से जिज्ञासु
इससे पहले इससे पहले
तत्कम बुद्धि संयोगम लब के पूर्व देहिकम यतते चतो भी संसिद्ध गुरु नंदन अथवा योगी नाम कुल भक्ति दे।
नारायण 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 नारायण। अर्जुन ने छठे अध्याय में ध्यान योग की बात सुनी। उस विषय में कहा कि महाराज मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे इस मन को पकड़ना बड़ा कठिन है। तो भगवान के तुम ठीक कहते हो, परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। ये बात हुई। इसके बाद भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, तो अर्जुन के एक बड़ी शंका है, ये बहुत विशेष शंका। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग सर्वसिद्धेन कां गतिं कृष्ण गच्छति। अयति ही यतन जिसका शिथिल है और श्रद्धा भक्ति है, ऐसा चला तो वो शिथिलता के कारण में अंतकाल में चलित मना हो गया, तो योग की संसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो उसी क्या दशा होगी। क्या उभय भ्रष्ट होकर के छिन्नाभ्र की तरह नष्ट हो जाता है, जैसे बद्दल का एक टुकड़ा दूसरे बद्दल में जाने नहीं लगा, बीच में छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही उसी गति होती है क्या? क्यों कि यहां तो प्रतिष्ठित नहीं रहा, योग सिद्धि हुई नहीं, तो यहाँ तो प्रतिष्ठ यहाँ तो चल दिया, योग सिद्धि भी बीच में ही रह गया, हो किस गति को जाता है। ऐसे पूछ अर्जुन का, ये तुमने संशय कृष्ण, ये मेरा संदेह है, आप छेदन करो, आपके सिवा इस छेदन का कोई, इस संशय का छेदन करने वाला है नहीं। तो ये जो 38 यहां से जो श्लोक था, संशय से अच्छे चेता नहीं उपद्धि थी, ये श्लोक कर इनमें अर्जुन की विशेष व्याकुलता मालूम देती है, क्योंकि इसमें अर्जुन ने कृष्ण संबोधन दो बार दे दिया, एक में संशय कृष्ण ऐसे और काम गति कृष्ण गच्छति। गीता भर में कृष्ण संबोधन 9 बार आया है, तो 2 बार यही खर्च कर दी, और 7 संबोधन दूसरी गीता को मिला। तो किस गति को जाता है, तात्पर्य ऐसी कि कोई साधन करने को चले, साधन के बीच में ही पूरी सिद्धि के बिना मर जाए तो क्या गति होती है, ये तात्पर्य इसका। तो भगवान कहते हैं कि भाई पार्थ नैवेह नामोत्र बिना शस्त्र से विद्यते, प्रसादनंदन उनका नहीं यहां विनाश होता है ना वहीं विनाश होता है, क्योंकि कल्याणकारी कोई पुरुष है जो कल्याण के लिए करता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती। इसमें भगवान ने तात समुदी तात, ये तात एक बार यात्रा गीता भर में, तो भगवान भी बहुत प्यार से कहते हैं। और पार्थ संबोधन बहुत आते हैं, उनमें पार्थ संबोधन ही बोल करके भगवान बोले, पार्थ नहीं भी है नाम उत्तर 38 दफे आया जी पार्थ। तो भगवान के पार्थ कहने का स्वभाव था प्यार से, और अर्जुन के इतने नाम ले आए, कौन से आज 24 दफे आया है, सबसे अधिक पार्थ नाम आया। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को महा कहा कृष्ण सब, ऐसे भगवान ने पार्थ का आरंभ है, और तात कहा प्यारे, दुर्गति उसकी नहीं होती। कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी क्या न हो, जो अपना उद्धार चाहता है और बस मार्ग में चलता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, ये आश्वासन दिया। तो क्या गति होती है, ऐसी शंका होती है। तो साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, अब देखो आपके प्रश्न का उत्तर खास अब आएगा। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं कि जिनको स्वतः संसार से वैराग्य हो गया, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति में किसी परिस्थिति में राग नहीं है, वैराग्यवान है और भजन में लगा है। और एक ने भजन में सत्संग के द्वारा महिमा सुनी तो भाई कष्ट साधन करना चाहिए तो वो साधन में लगा, तो वो विचार पूर्ण लगा है, उसमें वैराग्य पूरा हुआ नहीं है, सुन सुना करके ये का मार्ग अच्छा है ऐसे लगा। तो दो तरह के साधक होते हैं, तो राग से राग के रहते हुए साधन करता है उसका तो योग भ्रष्ट होना संभव है, परंतु वैराग्य उगते उसका भाई किसी कारण से वैराग्यवान का भी अगर अंत में चलित हो जाए मन, तो उसकी भी दुर्गति उस दोनों की किसी की नहीं होती। तो अगाड़ी दो प्रसंग बताए, तो जिसका राग रहा है और साधन में लगा है, उसके लिए कहते हैं वो स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, वहां बहुत वर्षों तक रहता है और फिर शुद्ध सीमानों के घर में जन्म लेता है। ये बात बताई। और दूसरे को अथवा कहकर, अथवा मन जो हो वैराग्यवान है तो राग रहने वाला बड़े बड़े पुण्य कर्म करने वाले जिन लोगों में जाता है, वह उनको पुण्य नहीं साधन में लगा है। पारमार्थिक साधन में लगा हुआ पुरुष सांसारिक बड़े बड़े यज्ञ दान तप आदि करते हैं, उन लोगों में वो नहीं जाते हैं। तो वे लोग जाते हैं तो उन लोगों में वो चला जाता है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता है। उसने यज्ञ दान तीर्थ पाप नहीं किया, परंतु अपनी वृत्तियों को रोक कर किसी तरह से भगवान के मार्ग में चलता है। तो सांसारिक विषयों का यहाँ भी त्याग कर परलोक में भी कामना का त्याग कर दे, कामना छूटी नहीं है, त्याग कर चलता है तो शब्द ब्रह्मा की वर्तती वेदों से ऊंचा उठ जाता है। तो वो बहुत वर्षों तक स्वर्गादि में रहता है, क्योंकि उनके भोग की वासना रही, सुख की वासना रही, तो भगवान वहां मौका देते हैं बहुत भोग भोग करके। और यहां जन्म लेता है तो शुद्ध श्रीमानों के घर में, लक्ष्मीवान है पर तो आचरण अच्छे नहीं है, वह नहीं सुचीनाम श्रीमतांग शुद्ध श्रीमानों के, दोनों जिनके आचरण बड़े पवित्र है, धर्म युक्त आचरण करते हैं और बड़े शुद्ध रीति से पैसा कमाया है और धनवान बने हैं, ऐसे धनियों के घर में जन्म लेता है। तो वो भोगों की वासना के कारण में स्वर्ग में जाता है और यहां भी आता है तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। भोगों की वासना रहने से ये आफत आई है, स्वर्ग जाना या धनवानों के घर में लगाई। और जिसके वासना नहीं थी किसी कारण से, योगा चलित मना हो गया, तो उसके लिए अथवा योगी नाम है वे, अथवा दूसरे की बात बताई वैराग्यवान की, योगी नाम एव कुले भवति, वो योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, वो शुद्ध श्रीमानों घर में नहीं, साधारण स्थिति वाले में योगी है, परमात्मा की तरफ चलने वाले अथवा परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे घर में वो जन्म लेता। दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि ईदृशम, ईदृशम जन्म ऐसा जो जन्म है ये दुर्लभ तर है। श्री शुद्ध सेवन उनमें भी दुर्लभ है, परंतु ये दुर्लभ तर है, ज्यादा दुर्लभ है ये, ऐसा जन्म हरेक का नहीं होता है। तो लोके जन्म यदि सब क्या
सततम बुद्धि संयोगम
सतम, अब आता है आपका श्लोक अगर ही आता है। तो वो क्या करता है, जो बुद्धि संयोग पहले जन्म था वो दूसरे जन्म में वो बुद्धि संयोग प्राप्त होता है। जितना साधन पहले किया है वो साधन अनायास ही जागृत हो जाता है, थोड़ा सा संग थोड़ा सा करने से चराचर वैसी वृत्ति हो जाती है। पौरु देह कम पूर्व देह में किया साधन योगी नाम एव कुले भवती। और यशसे तत्व भूया फिर वहां भी यत्न करता है, क्योंकि यत्न करता आया है संसिद्धि के लिए। अब ये तो इस गति तो हो जाती ठीक। अब कहते हैं पूर्वाभ्यास है ना, इसका पूर्वाभ्यास कहा, पौरु देह कब नहीं कहा। तो पूर्वाभ्यास जिसके संस्कार थे भोगों के, वो भी पूर्वाभ्यास सारा ते नहीं बचेते, उससे ही वो खिंचता है। मैं तो वह योगी श्री मानव के घर में जन्म लेने पर साधन की इतनी सामग्री नहीं मिलती, योगियों के कुल में जन्म लेने साधन सामग्री मिलती है। सभी अच्छे पुरुष है परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं, प्राप्ति हो चुकी है, उनके घर होता है। तो उनके कहते हैं पूर्वाभ्यास ते नहीं बढ़े थे, वो पूर्व का अभ्यास है, वो अभ्यास ही उसको खेलता है, तेज है उस अवश्य हो गए। तो जिज्ञासु योग से क्यों खेलता है कि जो योग का जिज्ञासु है, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसका जिज्ञासु होगा है, वो भी वेदों में कहे हुए जितने अच्छे अच्छे कर्म है जो वो शब्द ब्रह्म कहलाता है, उसको तो अतिक्रम वो भी कर जाता है जो जिज्ञासु भी। और ये तो योग भ्रष्ट है, योगा चरित मना है, तो योग में स्थित हुआ है। तो जैसे योगा चरित मना योग भ्रष्ट कहलाता है, तो योग भ्रष्ट हुआ ये तो योग में आरूढ़ होना चाहता है। आरूढ़ शोर मने योगम कर्म कारण मुच्य से, ऐसे योगारूढ़ होना चाहता है। और जिज्ञासु तो केवल योग की इच्छा है, तो इच्छा वाला भी ऊंचे लोगों में जाता है, शब्द ब्रह्म को अतिक्रम कर जाता है, तो इसे योग भ्रष्ट हुआ है। मानो योग का अनुष्ठान किया है, अब इसे प्रयत्नादल मानस्तु, अब प्रयत्न से यत्न करता है, प्रयत्न से यत्न दो यत्न बता दिया। मन तत्पर शास्त्र परमात्मा की प्राप्ति में लगा है, योगी संशुद्ध किल विषय, वो योगी संशुद्ध किल विषय, उनके पाप शुद्ध हो गए, पाप नष्ट हो गए। और अनेक जन्म संसिद्ध, पहले योग अभ्यास किया है, उस जन्म से इस जन्म से दो जन्म हो तो अनेक जन्म, अनेक नाम पांच सात दस बीस का नहीं है, अनेक एक बिना अनेक एक नहीं है, एक जन्म भी नहीं है, पूर्व जन्म का भी अभ्यास है, यहां भी करता है, तो अनेक जन्म से सिद्ध है वो। इसका ये अर्थ लोग लेते हैं कि अनेक जन्मों से सिद्धि होती है, ये नहीं है, अनेक जन्म संसिद्ध, संसिद्ध ये कृप प्रत्यय है, अनेक जन्म से सिद्ध है ये, इस जन्म से भी पहले जन्म से भी सिद्ध है, इस वास्ते परम गति हो जाता है। तो जिज्ञासु हो जाते योग भ्रष्ट जाते, योग भ्रष्ट नाम उसका हुआ तो योग में चलता है। जैसे कोई मिडिल परीक्षा में पास हो एक नंबर में और एम ए में फेल हो जाए, उसका मिडिल से भी कमजोर होगा वो, उसको एमएम फेल होता है, एमएम फेल है तो फेल की भी प्रशंसा है। तो ये योग भ्रष्ट है, योग में चला है, वहां से भ्रष्ट हुआ है, तो बड़ी डिग्री में फेल हुआ है। तो साधारण आदमियों से तो श्रेष्ठ है, साधारण साधन करने वालों में भी श्रेष्ठ है, अथवा से अनेक जन्म संसिद्धा, तो संसिद्ध है ये सम्यक सिद्ध हुआ हुआ है, अनेक जन्म में सिद्ध होगा ये अर्थ नहीं है इसका। भूतार्थ नक्ता प्रत्यय होता है तो पहले अनेक जन्मों से सिद्ध है ये, इस वक्त परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अनेक जन्म संसिद्ध है इसमें शंका होती है मनुष्यों की ज्यादा कि जो साधन करते हैं तो एक जन्म में सिद्धि नहीं होती, कई जन्म लगते हैं तब सिद्धि होती है, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। ये अनेक जन्म सिद्ध उसके लिए कहा है जो योग भ्रष्ट हुआ है, पहले योग साधन करता था उसका प्रसंग है। इस बार जो परम गति वो चला जाता है और इतना निर्माण वस्तु प्रयत्न से यत्न करता है तो पहले योग भ्रष्ट हुआ तो इसमें बड़ा सावधान रहता है वो, प्रयत्न यत्न किया कि आज साधन किया, आज जैसे तत्परता से भजन स्मरण किया तो आगामी कल दिन इससे भी तेजी, परसों उससे भी तेजी, ऐसा साधन में तत्परता से ऐसा लगा कि दिन प्रतिदिन उसकी साधन तत्परता तेजी से चलती है। क्योंकि अनेक धर्म संसिद्ध है तो उसकी साधना बड़ी तेजी से होती है। प्रयत्नादि मानस तू, ये तू बताया विलक्षणता है इसमें, इसकी तो बात ही क्या है भाई, पहले जन्म से इस देश में ही। और यतमानस तू, इस वास्ते पाप सब नष्ट हो जाते हैं। पाप कौन से नष्ट हो जाते हैं कि सब के सब जो कि परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने वाले हैं वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पाप के लिए शब्द पाप आया है ना, ये पुण्यों को भी बीच में समझ लेना चाहिए। जो पुण्य परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है वे भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्यों से पुण्य लोग मिलते हैं अच्छे, तो पुण्य लोग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, साधन मिलना मुश्किल है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करके जो सच्चे हृदय से चलते हैं वे मामूली पुण्यशाली नहीं है। ये शान तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके इतने पवित्र कर्म है तो पुण्य कर्मणाम जिसका पाप अंतगत हो गया है, ये शांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ऐसे वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं सुगमता से। तो पहले से ये साधन करते आए हैं, कर्म जो होते हैं पवित्र वे पवित्र लोग देते हैं ऊपर के, परंतु बहुत पुण्य कर्म वे हैं जो निष्काम भाव से करते हैं। पुण्य नाम पवित्रता है, पुण्य पावने धातु है, पवित्र करना वाले। तो अनेक जन्म संसिद्ध है, पहले वाले जन्मों से भी वो सिद्ध है, वो भी उनके मदद है और यहाँ प्रयत्न यत्न करता है तो उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है। इस वास्ते अनेक जन्म संसिद्ध है, इसका अर्थ कि भगवान के भजन में लगने वाले को अनेक जन्म लगते हैं ये है नहीं। मनुष्य जन्म मिल गया तो ये अच्छे पुण्यों से मिलता है, पुनः जन्म के मिलने के लिए 84 लाख जोड़ी भोगते भोगते बारी आने पर मनुष्य जन्म मिलता है, परंतु कब की करी करुणा नर दे ही डेत ईश बिनु हेतु सने ही, लंबा बहुत समय चला जाएगा। तो भगवान हर एक प्राणी को 84 लाख भुगतने से पहले भी मौका देते हैं, वो कृपा कर जन्म देते हैं, विशेष अधिक कृपा करके। तो इसमें दो बात आई है, इसमें भगवान का नाम लिया बिज हेतु सने ही, बिना हेतु ही कृपा करने वाले, तो कृपा गए उनकी ही स्वतः प्रवृत्ति है भगवान की मात्र जीवों के उद्धार करने का, ये स्वभाव है। और कब होगी करुणा, करके करना करते कभी कभी करुणा मर दी, तो कृपालु स्वभाव और स्वभाव के सिवाय करुणा करके आप मनोजन दे कृपा करते हैं, तो कृपा दुगुनी हो गई। एक तो सामान्य कृपालु है जिसमें पांचवा अध्याय के अंत है ना, सुहृदम सर्वदे सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति, मातृ प्राणी के भगवान सूर्य है, सूर्य और मित्र में भेद है। ऐसे सामान्य दोनों एक भी कहलाते हैं, परंतु छठे नौवें अध्याय में आया है क्या सूर्य मित्र आर्य उदार, सूर्य मित्र दोनों, सूर्य और मित्र दोनों को बताया, सूर्य मित्र उदासी न मध्यस्व देशी बंधुषु साधु पापेशु स्तम बुद्धि विशेषते, तो सूर्य में मित्र, तो सूर्य में मित्र में भेद है। मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करने वाला, और सूर्य वो होता है उपकार करे न करे अपने तो उपकार करना ही है, उपकार करने का इतना नहीं है। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद करो जो करे ही भलाई, ऐसे स्वभाव वालों को सूर्य कहते हैं। तो भगवान सूर्य है किसके, संपूर्ण प्राणियों के, स्थावर हो जंगम हो पापी हो पुण्यात्मा हो संत हो दुष्ट हो, सब में सब पर मोरी बराबर दया, सब भगवान कहते हैं मेरी दया बरोबर सबके ऊपर। और गीता कहती है कि समो हम सर्वभूतेषु न द्वेष्योस्ति न प्रिय, कोई भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध चलता है तो उसके साथ भी भगवान का द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, और अनुकूल चलता है उसी का पक्षपात करते हो ये बात नहीं है। वो तो सामान्य रीति से कृपा करते ही है, जैसे वर्षा जब आती है तो वे कांटों वाले वृक्ष हो तो खेती वाले हो तो बंबू हो चाहे आम का ही बगीचा हो, वर्षा में फर्क नहीं रहता, एक समान ही बरसता है। और एक समान जैसे जंगल में बरसता है ऐसे सुंदर फलों वाले बगीचा पर भी बरसता है, और तो क्या कर समुद्र में बरसता है, अब समुद्र में कांटे पूछे जल की तो समुद्र में ही वर्षा होती। ऐसे भगवान का अनुग्रह सब पर है, सब पर कृपा करते हैं। अब इसे सन्मुख हो मोहि जीव मोहि जब ही कि जन्म कोटि अभिलाषे ही तब ही, कृपा तो उनकी है। अब कोई सन्मुख हो जाए तो कृपा मिल जाती है, दूसरों पर कृपा नहीं है ये बात नहीं, वो सन्मुख नहीं होते। वर्षा बरसती है परंतु ऐसे सामने मुख नहीं होता, तो धारा पड़ते हुए भी घड़ा उल्टा कर दे तो भरेगा नहीं, अरे खुला करके भर जाएगा। ऐसे सन्मुख हो जाए भगवान के, करोड़ों में पाप नष्ट हो जाएंगे, तो करोड़ों में जो पाप नष्ट हो जाएंगे सन्मुख होते ही, तो अनेक धर्म संस्कृत नहीं है, सन्मुख हो जी उमोय जब ही जन्म कोट जाकर न से तब ही, जब ही तब ही कभी हो जाओ। सन्मुख होना क्या है कि संसार की वस्तुओं का संग्रह करना और उपभोग करना ये उसका उद्देश्य नहीं है, है संसार में ही, उपार्जन भी करता है भोग भी भोगता है ऐसा आरंभ भी रहता है, परंतु उसका ये उद्देश्य नहीं है भाई पैसा इकट्ठा करो, हाय पैसा ये नहीं है, और भोग भोग ले ऐसा नहीं है। ऐसे पुरुष होते हैं ना तो वे परमात्मा की प्राप्ति में जल्दी चलते हैं, वे सन्मुख कहलाते हैं, और संसार के भोगों में संसार के रुपयों पर वस्तुओं के संग्रह में लगे रहते हैं, वे सन्मुख नहीं हुए भगवान की, वे सन्मुख संसार के हैं, संसार में रहते पसे रहते हैं वे महाराज, ऐसे लगे रहते हैं भगवान की बात सुनते ही नहीं, कोई सुनावे की परवाह नहीं करते, और ये रुचि नहीं, रुपया पैदा न हो तो उनका मन नहीं लगता। हमारे एक वैद्य थे, एक गांव में ठहरे, तो गांव में जल्दी जी कौन बुला, फीस कौन दे, तो व्याकुल हो गया, कुछ पैदा नहीं है यहाँ, हजार रुपये पास में थे पर पैदा नहीं है, मन नहीं लगता। रोजाना कुछ न कुछ पैदा होने चाहिए, लखपति करोड़पति अरबपति है, जितने बड़े धनी हैं उतने बड़े भूखे हैं, उनके भूख बड़ी होती है, थोड़े छोटे धनी हैं उनकी भूख छोटी, और ज्यादा भूख है वे भूख बड़ी डाकियों तक खाने आती, और हजारों की भूख होती है, हजारों की होती है छोटों की, उनके लाखों की होती है, वे सन्मुख संसार के हैं, संसार में रहते पसे रहते हैं, वे महाराज ऐसे लगे रहते हैं भगवान की बात सुनते ही नहीं, कोई सुनावे की परवाह नहीं करते, और ये रुचि नहीं, रुपया पैदा न हो तो उनका मन नहीं लगता। हमारे एक वैद्य थे, एक गांव में ठहरे, तो गांव में जल्दी जी कौन बुला, फीस कौन दे, तो व्याकुल हो गया, कुछ पैदा नहीं है यहाँ, हजार रुपये पास में थे पर पैदा नहीं है, मन नहीं लगता। रोजाना कुछ न कुछ पैदा होने चाहिए, लखपति करोड़पति अरबपति है, जितने बड़े धनी हैं उतने बड़े भूखे हैं, उनके भूख बड़ी होती है, थोड़े छोटे धनी हैं उनकी भूख छोटी, और ज्यादा भूख है वे भूख बड़ी डाकियों तक खाने आती, और हजारों की भूख होती है, हजारों की होती है छोटों की, उनके लाखों की होती है, और करोड़ों की होती है, लाख पांच सात दस लाख तो कुछ पसंद भी नहीं आते, दो चार करोड़ हो तो कुछ पैदा हो, अरबों के पास समय घर ही है, परंतु फिर भी उसी में लगे हुए हैं। ये बड़ी दुर्दशा है भाई हो। शेर जी ने कहा था बड़ी से सत्संग में, कहा भाई भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हमारे को रुपया मत देना, मारा हे भगवान रुपया मत देना, रुपया वाला अंधा हो जाता है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी लोभ बढ़ता ही रहता है, तो उसमें कृष्णा बढ़ती है, बढ़ती ही बढ़ती चली जाती है, दो में से बीस से पचास से भजे से तो हो या हजार हो तो लाख मंगेगी, अरे कोटि अरब खरब भजे पृथ्वी प्रति होने की चाह जगेगी, और स्वर्ग पाताल को राज मिले तो तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, ये संतोष कर दूरी में भगेगी, रुपयों से भूख मिट जाए ये नहीं है, लोगों को बयान है भोग भोगने से भोग निवृत्त हो जाएगी, धन मिलने से तृप्ति हो जाएगी, ये है नहीं, न जातु कामक कामानाम उपभोगे न साम्यति, भोग भोगने की इच्छा होती है तो भोगों के भोगने से भोगे इच्छा शांत नहीं होती। जैसे दृष्टांत दिया, हमेशा कृष्ण वर्तने एवं भूये एवं विवर्तते। जैसे कृष्ण वर्तमान काराधिकार रहता है अग्नि, उस अग्नि को सहती सहती घी की आहुति देते रहो तो भी घी से शांत हो जाए। शांत जी भरकरी जोर से जो घी डालो जोर से हमेशा कृष्ण वर्त में भूये एवं विवर्तते, वो फिर भी बढ़ती है। ऐसे उनको लोभ होता धन मिलता क्यों ज्यादा होती है। लोभ के दो लक्षण होते हैं, एक तो आवश्यकता होने पर भी खर्च करने में कंजूसी करते हैं और एक अन्यायपूर्ण संग्रह करने में लगे रहते। लोभ होने पर, क्योंकि लोभ नरकों का विरुद्ध कहा भगवान ने, त्रिविधम नरक से दम द्वार नाशन आत्मन आत्मन नाश, अपना पतन करने वाले नरकों के तीन द्वार तुमो द्वार है, अंधा का अंधार अंधेरा का। तो काम क्रोध और लोभ, ऐसे ही काम है वो भी पदार्थों का सेवन करने से काम की शांत हो जाती है, नहीं होगी। इस वास्ते काम का प्रसंग आया, वह दुष्पूर्ण अनलेन चलिका है। ये काम दुष्पूर होता है, अनल होता है। नाम आग नागदृष्ट काष्ठा राम, अग्नि में काष्ठ ज्यादा ज्यादा डालो तो अग्नि यूं नहीं करती, वह अब बता दो, अब जो तृप्ति हो गई वो तृप्ति नहीं होती, वो तो बढ़ती है। ऐसे इनको पदार्थ इन काम मिलेंगे, कामना पूर्ति होगी, सुख भोगले थोड़ा और भोगले और भोगले, बड़ा भारी इसमें नुकसान है। ये होती है मन में कब इतना भोग भोगने ठीक हो जाएगा, इतना भोग भोगने फिर ठीक हो जाएगा, ये ठीक हुआ नहीं। ये तो त्याग से शांति मिलेगी, संतोष आदनोत्तम सुख लाभ। तो सन्मुख होने में, परमात्मा के सन्मुख होने में ये जो काम और क्रोध और लोभ है ये बड़े विपरीत है, बाधक है। ये इसमें चला जाएगा तो नरकों का दरवाजा है, तो सन्मुख नहीं हो सकते है। वे सन्मुख पदार्थों के भोगों के मान बढ़ाई आदर के इनके भूखे होते हैं। अच्छे अच्छे साधन करने वालों के लिए भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मान मिले, आदर मिले, प्रशंसा मिले, आराम पूर्वक रहे, वहां लहरा मन करता है। जहां भिक्षा भी ठीक नहीं मिले, साधु हो गए, भिक्षा भी ठीक नहीं मिले, रहन सहन ठीक नहीं, सब देख रहे हैं, वे समझे हमें बैराग्य हमारी क्या मतलब है, हम वैराग्यवान है, हैरागवान मन में समझते हमारे वैराग्य है, उसको तोड़ देते हैं, थोड़ी मन के विरुद्ध बात थोड़ी तोड़ देते हैं। नरनाथ ने देवी ने कहा था कि ये गृहस्थों की अपेक्षा साधु कमजोर ज्यादा होते हैं, गृहस्थ अलबत्ता मजबूत होते हैं। इनके मन के विरुद्ध हो जावे कहा, क्या माँ बाप को छोड़े, बहन भाई को छोड़े, स्त्री पुत्रों को छोड़े, किसको छोड़े, जा नहीं सकते। बाबा जी थोड़ी मन के बुद्ध हुई चट चल दी तू लेकर दी, तो ये सह नहीं सकती, अग्रस्तों को सहना पड़ता है, जावे कहाँ। तो ये कचास बहुत रहती है, तो साधुओं को विशेष सावधान मिलना चाहिए कि भाई फंस जाएंगे कहीं। और ये बाबा जी महाराज महाराज लंबे लंबे हाथ जोड़ने वाले हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। नियत उनकी अच्छी है, नियत खराब नहीं है, संतों की सेवा करते हैं, नियत अच्छी है उनकी तो, परंतु साधुओं को सावधान रहना चाहिए। ज्यादा मान, ज्यादा आदर सत्कार, सुख सुविधा चीजों ज्यादा मिलती है, वहां फंस जाए, परंतु भीतर से तेजी का बहरा है वो तो परवाह ही नहीं करते। एक संत मिले थे, वो कहते थे कि मैं एक गरीब संत के साथ में रहा तो किसी गांव जाते वहां दो चार दिन ठहर के भिक्षा मांग कर अपना पा लिया, थोड़ी कुछ बातें करके परिचित हो जाते लोग और लोग आगे करने लगते, भिक्षा भी कुछ ठीक मिलने लगती तो रात्रि में कहा चलो ऑप्शन बाबा अच्छी भिक्षा मिलती है आराम से बैठ गई निकल रात्रि में चल देते और लेके जाता। ये घड़ी होती है अर्थ की, ऐसी घड़ी बिना छेद वाली घड़ी होती, थोड़ी बड़ी बड़ी घड़ी हुई उसके रस्सी बांधी खास में रखते वो पात्र था बस। और ये ब्रह्म चोरा करते हैं या यहाँ बांध लिया बस ऐसे चलते हुए तो उनके साथ में वो कहते थे सब कि जहां कुछ आराम से रहने लगे रात में चलो, रात में दिन में जाओ दे रोक ले को रात में चलो। ऐसे संतों की बात हमने जीवन ही सुनी है। जियारा जी महाराज थे, वो जहाज वो बात जंगल में प्राय जंगल में रहते थे, जार बैठते जो लोग आ जाते बहुत लोग आ जाते और ये साथ रहे हुए मिले हैं तो वे कहते थे लोग आ जाते वो आटा ले आते वो रोटी वो बनाते बाबा जी बैठते खाते ये इतना और लोग राजने के बीच में घी के लटकते रहते। पर ज्यादा लोग आने लगते तो रात ही वो सब उस चल दिए दूर पीछे जाते खोज करते फिर कहीं मिलते। गर्मी के दिनों में जंगल में बड़े बड़े करीर के वृक्ष कह लिया उनके वृक्ष मोटो कह रहे बड़ा उनके बीच में बैठ जाते बीच में बह जाकर तो लू भी नहीं लगे गर्मी न लगे प्यास न लगे जल लावे कहां से जंगल वहां जल कहां कोसा जल जल नहीं उसमें बैठे रहते अपने और भजन करते। ऐसे संत थे उनके साथ रहे हुए संत मिले महाराज धर्म से पहले की बात है भाई पुरानी बात। ऐसे ऐसे संत के विरुद्ध त्यागी अब कहाँ है, अब तो हम तो शहर के साधु हो गए भाई। लोग हमारे कहते हैं हम तो ऐसे साधारण साधु थे तो गांव में रहते तो लोग कहते तुम्हारे बाजरी की रोटी भाती नहीं है तो फुलका खाते हो गेहूं की रोटी खाती है इस बात की दलियों में जाते हो तो बात तो बड़ी सच्ची है। एक बात याद आई बीस में आ गया एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया नला दला करके किनारीदार कुर्ता पहनाया टोपी पहनाई बड़ा अच्छा श्रृंगार किया। वो गए तो जाकर कादे को आए कादा लगा लिया वही बैठ गया गोमूत्र कादा तो मैया बोली तुम शू को दोषी गल जन्म नहीं पूछना अरे पूछने का नाश करने वाला तू पहले दिन में सूअर था सूर तू काले विचार भेजे सूर का काम है कोई मिल जाए बोलिए बेसूर का काम है सूर का काम है तो कहने कहते माँ तो सत्य कहती बात ठीक है बड़ा अवतार लिया था ना तुम शुरू करो ऐसे बढ़िया कपड़ा पहनाया जाए काले में सुन गया काले लगा लिया अब क्या जरूर थी बात कोई आवश्यकता नहीं सूर ठहरा सूर तो काले में जाता है। जैसे वे लोग कहते हैं तुम तो ऐसे होगे جو وہ بڑھیا بڑھیا بھوجن چاہیے تم تو شوقین لوگ بھائی ٹھیک کرتے ایک سادھو ہے میں ماں نے روٹی دی ایک ماتا نے تو ماتا یہ تو ٹھنڈی ہے کہ مراد آپ سادھو نہیں ہو سوادو ہو آپ کو سواد چاہیے نہیں تو مل جائے ادھر پورتی کرنا ہے کیا ٹھنڈی کی آواز ہے ادھر ادھر بھرنا ہے تو یہ بات ہے تو ہماری تو ہم ایسے ہیں جو ٹھیک سہ نہیں سکتے سنتوں کے بالکل سنتوں کے ایسے قابو سے مزہ پریچے زیادہ نہیں لوگ پرسدھ کر لیتے پھر وہ پریچے نہیں بڑھاتے ہم تو اس بات کہنے کا ادھیکاری نہیں ہے ہم تو پریچے بڑھاتے گاؤں میں جاتے شہروں میں جاتے کیا کام دیتے پرچ تو ہو جائے آپ ٹھوکرا ہوئے ہمارے کو اچھا سمجھتے ہیں یہ ادارتا ہے ان کی جو اوگروں کو دیکھتے ہی نہیں کمی کی طرف نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں سوامی جی بڑے اچھا ہے ہم بھی راضی ہو جائیں وہ بھی راضی ہو جائے جے رام جی کی کھیل ختم ہو پیسہ حاصل سننے سننے والے راضی ہو جائے تو ایسے بلک سنت ہوتے تھے وہ گھومتے تھے جو دنیا کا ادھار کرتے تھے ان کے دوارا دنیا کا بڑا ادھار ہوتا تھا آچرن دیکھ کر کے ان کی جیونی پڑھ کر کے ان کی باڑی پڑھ کر کے ان کے درشن کر کر کے لوگ کرتارت ہوتے تھے ہمارے یہاں سنتوں کی بڑی مہیما گائی گئی ہے راجا لوگ راج کرتے تھے پر سمتی رشی منیوں سے لیتے تھے صلاح ان سے کرتے تھے بسنت جی مہاراج کے من میں بھی رام کو راج دینے کے یوراج پر دینے کے لیے من میں آئے تو وشیش بھی جانتا پہلے پور وشیش جی سے کہا کہ کچھ نہیں کیا تم تو بتاؤں گی وشیش جی سے پوچھا وشیش جی کو بہت اچھی بات ہے پہلے بھی چاہتی کہ اب جو یوراج رام جی بن جائے گا آج یہ کرے یہ بات تھی تو وہ صلاح رشی منیوں سے لیتے تھے ان کی صلاح سے کام کرتے تھے اب راج میں دیکھو لولو خود بھی اور وہ سلاحگار بھی ایسے ہی اب کیا ہو دشا دیکھ لو بھارتی کی دشا یہ بات ہوئی مہاراج تو وہ سنت سے جو ہوتے کرتے تھے تو انیک جنم سنسدھا وشے یہ چل رہا تھا تو پہلے جنموں میں بھی سادھنے کرتے چلے آئے ہیں انیک جنموں سے سدھ ہوئے ہیں اس واسطے پرم گتی کو چاہتے ہیں یہ نہیں کہ انیک جنم لگیں گے سدھی کے لیے نہیں انیک جنم سر سدھا پہلے سے ہے وہ تو اس وقت پرم گتی کو پراپت ہو جاتے ہیں پہلے یوگ بھرشٹ ہوئے تو پہلے جو ٹھوکر لگ جاتی ہے کبھی تو آدمی کو چیت ہوتا ہے چھوٹا دروازہ اور سر پر لگ جائے تو ہوش ہو جاتا ہے اور اس میں دو بار تین بار لگتے ہوش نہیں ہوتا تو اس کا کلیان نہیں ہوتا ایک سنت تھے گاؤں کے باہر رہتے تھے اور سادھوں کو ستسنگی بات سنایا کرتے ان کے گفا بنا رکھی تھی تو گفا میں پستک پڑی رہتی کسی جاتا بھائی جاؤ گفا لے آؤ جل لو ہے پستک لے آؤ تو پولیس جاتے باہر سے جاتا تو گروپ میں اندھیرا دیکھتا جاتا کچھ دیر ٹھہرنے سے تو پرکاش ہو جاتا ہے وہاں ایک گھنٹی بنا رکھی تھی ایسی تو ٹھیک سر میں لگے تو ٹن بول کر بابا جی کا لاگی دوبارہ پھر بھیجتے دوسرے دن تین دن پھر لاگی ماتھے میں دو تین چار بار لگ جاتے کہ یہ سدھ نہیں ہوگا یہ سادھن نہیں کرے گا سر میں چوٹ لگنے پر بھی چیت نہیں ہوتا کیسے کرے گا بتاؤ تو یہ پریکشا کرتے تھے سنت یہ کر رہا گئے تو یہ بار بار ٹھوکر لگے پھر بھی نہیں ہو یہ سب نہیں انیک جنوں سر سدھا انیک جنموں سے بڑی ساودھانی سے کام کرائے اور ایک بار چوک جاتا ہے تو وشیش ساودھان ہوتا ہے وہ यहाँ ठोकर लगती है भाई, सावधान रहो, तो सावधान हो जाते हैं। ऐसे सावधान होते हुए साधन तेज बन जाते हैं, बार बार ठोकर लगे बार बार घोष गई तो वे नहीं होते जल्दी। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि वो ठोकर लगाते ही रहते हैं, बार बार लगाते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं भगवान। ये दुख देने में भगवान की कृपा बहुत ज्यादा है। बच्चे के कहीं थोड़ा पुंसी हो जाए और ज्यादा तकलीफ हो जाए तो माँ ले जाती है डॉक्टर के सामने, छोरा करता है वो छोरा लिए हुआ है, ची ची करता है, माँ पकड़ लेती है, कभी इसको पकड़ लो कहीं ऐसे हिल जाएगा तो घाव हो जाएगा जल्दी, तो माँ पकड़ लेती है, वो चीजा लगाता है, वो देखते ये क्या माँ है, माँ पीड़ा पहले ही हो रही, छुरी लगाती यहाँ लगा दे छुरी, यहाँ छुरी लगाएगा छुरी ताट पड़ी है, ताट पड़ी को पूरा ठीक करने में पहले ही दूँ होता है फिर छुरी लगा हुआ इस जगह, बहुत दूसरी जगह नहीं है क्या, तो माँ का चित्त कोई राजी थोड़ा ही होता है, वो ब्याज नाश हित गणे में सो शिशु पीर, बालक के दुख होता है तो माँ के दुख कम नहीं होता है, पर माँ सह लेती है तो इसलिए इन्हें पीड़ा मिल जाएगी। ऐसे भगवान है जो कई तरह के दुख देते हैं, भगवान को दया नहीं आती, अब दया क्या करे, वो तो थोड़ा साफ कर देते हैं फिर पीप निकाल नहीं राम 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 ती करे, ऐसे डॉक्टर करते हैं भगवान, बड़ा डॉक्टर है, बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं, आप डरते रहो डरते रहो, भगवान को दया नहीं आती है। अरे दया नहीं आती है, दया का खास दया जो बिन हेतु चले, बिना हेतु चले करते हैं, तो माँ की कृपा कम नहीं है, चीरा बुलाने में माँ पकड़ कर बुला देती है कि बच्चे की बीमारी दूर हो जाए, ऐसे भगवान कृपा करते हैं। देखो दुख भेजते हैं लक्ष्मी पर, उन पर भगवान की कृपा ज्यादा होती है, अपने कई लड़के होते हैं संतों के कई सत्संगी और होते हैं, तो काम धंधे की बुद्धि बात किसको कहते हैं जिस पर ज्यादा कृपा होती, उनको तंग कर देते हैं। हम पढ़ते थे तो हमारे विद्यागुरु जी कहते थे कि मेरे सामने विद्यार्थी टिकते नहीं, सुबह 4 बजे उठा करके नहाओ और करो याद करो, शाम को 10 बजे तक छोड़ देंगे, पाठ सुनाओ, सर्दी के दिनों में तो याद करते दीवे के पास बैठ कर एक ही एक तेल का दीवा 3-4 बैठ जाते प्रकाश, अब लावे कहा पैसा, पैसे थोड़े तेल के पास एक दीवे बस 3-4 पढ़ते थे, विजय वजह कहाँ से हुआ ऐसे पढ़ते थे, तो सुबह जल्दी उठा करके होकर याद करोगे तो याद करा दे, पढ़ाते मिलते हैं पीछे पढ़ते हैं आराम भी लगे, भोजन के बाद में 5-7 बजे गोल्डो घंटे बस पर फिर पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन नहीं पढ़ो, पर पढ़ते हुए होशियार हो जाते हो, समझे जंत्री होती है जंत्री, आजकल में नहीं हुए सुना लगे जंत की होती है,
सुनी कौन आप क्या बोले,
एक जंत्री होती है जो सुना लोगे तो तार निकाल देना, उस तार को ये कूट करके बोला किनारा कर देता है महीन, वो उस छेद में देते हैं, छेद में पकड़ झुमुरे से खींचते हैं तो उस तार महीन हो जाता है, एक बारा दिया दूसरा बारा या तीसरा बारा तो जितना जंत्री मांग कर निकलता है, इस बात से कहते हैं ये साधु है विद्यार्थी है ये जंत्री मांग कर निकला हुआ है तो अच्छा हो जाता है, साधु अच्छे हो जाते हैं। دنتری مگر نکال دیں گے. ایسی دنتری ہوتی ہے سنتوں کے پاس جو ٹھیک طرح کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں. کوئی اچھا پڑھتا نہیں ہے, ٹھیک نہیں جانتا, تو اسے گرو جی اچھے نہیں ملے. جیسے لڑکیوں کے لیے کہتے ہیں مہاران سکھایا کھولی, اس لیے کہتے ہیں گرو نہیں ملے گرو. آج گرو ملے تو آپ ایسے نہیں رہتے, سچے گرو ملے تو. تو اپنے کو سچا بنانے میں ہماری فضیلت ہوگی. کوئی سنانے والا ملا نہیں. تو آپ کرپا کرو تو ہماری عزت ہو جائے. تو لوگ کہتے ٹھیک ہے. تو پریتنا مانس وہ تو مراد پریتن جو پہلے پہلے بھوگ چکے ہیں, جنتری مکر نکلے ہیں, وہ پریتنا مانس یوگی سنشد کلبیشا انیک پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں. یہ دکھ ہے وہ دکھ آتا ہے, کلیش ہوتا ہے, ان سے پاپوں کا ناش ہوتا ہے. اور سکھ ملتا ہے, آرام ملتا ہے, اس سے پنیوں کا ناش ہوتا ہے. تو اچھے پروش ہوتے ہیں وہ پنیوں کا ناش نہیں چاہتے ہیں, پاپوں کا ناش چاہتے ہیں. تو سکھ میں پنیوں کا ناش ہوتا ہے, پرتیکول پرستھتی میں پاپوں کا ناش ہوتا ہے. تو وہ پوتر بنتے ہیں. دیکھا ہے ہم نے کہ بیمار رہ جائے, موکت جر آدی ہو جائے, سنیپات ہو جائے, ایسے جر ہوتا رہتا. بیماری ٹھیک ہونے پر کوئی کتھا سناؤ بھگوان کی تو روڑے لگ جاتے, گد گد ہو جاتا ہے. بہت اس پر اثر پڑتا. ہم دیکھ لینا کوئی بیماری بھوگ کر اٹھا ہے, اس کو بھگوان کی بات سناؤ گد گد ہو جائیں گے, کیونکہ وہ پاپ نشٹ ہوئے. سست بیماری سے پاپ نشٹ ہوتے ہیں, ہرد شدھ ہوا ہے تو بھگوان کی باتیں گر کرتی ہے. تلسی پورو پاپ تے ہری چرچا نہ سہائے, جیسے جڑ کے جور سے بھوک بنا ہو جائے. جڑ آ جاتا ہے ان اچھا نہیں لگتا, ان کی گند آتی ہے. اتنے بڑے کیسے ہو بابا اندر, تو کیا کہ بھیتر میں بیماری ہے بیماری. پت کا جور چلتا تو مسٹری کرنے لگے, مسٹری کری ہوتی پر پت ہوتا ہے زیادہ. اس طرح سے بھگوان کی بات ان کو سہاتی نہیں, بھگوان کی بات پڑ گیا. آپ پریشان کر کے دیکھ لینا, کوئی ایسا آدمی آ جائے اور بات کرنے لگے تو بیچ میں گیتا جی کی بات چھیڑ دینا, ذرا پھر ملا کہ ذرا. اور ایسے باتیں کو سن بیٹھ جائے گھنٹہ بھر بیٹھ جائے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. ماشا تنگ کرے نا تو بڑی آتے لے کر لگائے لو, بیٹھے گند بھی ہو جائے ماشا میں گھس جائے تو وہ سکون بھی چاہ. ایسی بات ہوتی ہے سمان سی لب سکھیم. آپس میں سمان سوبھاؤ ہوتا ہے تو ان میں سچ بھاؤ ہوتا ہے. تو انیک دنوں سے دیوری کی چرچا بھگوان کی ہوتی ہے. تت چنتنم تت کتنم انیونیم تت پربودھنم ایک پرت پنت ابھیاس کلٹو بدھی تد بدھ تداتمان تن نشا تتپرائنا مت چکتا مدگت پرانا بوجھنت پرتم کفن تو سمان لیکن تو سنتی سے رمنتی سے تت کہتے ہیں تت کرو دے اس کا ہی کرنے کہتا ہے ان کو ہی بتاتے ہیں. اور پرسپر بھی وہی بات کرتے ہیں بھگوان کی. تو بھگوان کی بات اچھی لگتی ہے, پیاری لگتی ہے, کہنے میں سننے میں چنتن کرنے میں یاد کرنے میں آنند آتا ہے. اس کو یہ کرنا نہیں پڑتا ہے کہ میں کر سکیں, ارے کرے بنا رہ ہی نہیں جاتا. اتم بھوت گنوں ہری مدار لکھا ہے بھاگوت میں, آتما راماشت منیا آتم رمن کرنے والے سدا چپ کرتے ہیں, آپ تو کاما آپ میں کاما سب کامنا پوری ہو, کوئی کامنا نہیں رہی اور سب بھجن کی دھیان کی پرماتم تتو کی سگن کی نرگن کی کوئی کامنا نہیں, اسی بھی کوئی اچھا باقی نہیں رہی. ایسے آتما راما استعمال نرگن تھا بھیتر کے گرنتی بھید ہو گیا, اور دوسرا ارتھ ہوتا ہے یہ گرنتوں سے اونچے اٹھ گئے. گرنت ہے نا تو گرنت ہے وہ اپدیش دیتے ہیں, تو اپدیش سب مورکھوں لیے ہوتے ہیں. نرگرنت تھا گرنت ان کو چھٹی آسمان نبرتتے گرنت ان سے شاستر آسمان نبرتتے اس سے شاستر نبرت ہو جاتے ہیں کہ اپنا پھل دے دیا اب شاستر کار کر لیا. ایسے نرگن تھا ابھی اروک کرمے بھگوان میں جو تین پگوں سے ناپ لے پرتھوی کو, ایسے بھگوان کی بھکتی کرنے والے کون تھی اہیت کی بھکتی کیوں کرتے گا اہیت کی بھکتی. اب بھگوان شنکر کو کیا کرنا ہے بتاؤ, کون سا یوگ سیکھنا ہے, گیان سیکھنا ہے, کیا سیکھنا ہے کہ میا تیرے بالا کا درشن کرا دے یہ من میں بھگوان میں لگے رہتے ہیں. یہ سگن نرگن کا آج بھید کرتے ہیں, پہلے ہم سنتے سنکادی گئے ناردادی گئے برہمادی گئے کئی کئی اچھے وشٹ آدی جو سنت ہوئے ہیں مہان رشی ہوئے ہیں وہ مہاراج سگن میں بھی ایسے ہی آکرش ہوتے ہیں, نرگن میں بھی ایسے ہی ان کے بھید نہیں ہوتا تھا کیونکہ تتو وہی ہے سگن تو گن سہت اور نرگن تو گن رہت ہے تو ایک ہی وہی ہی گن رہت وہی اور گن سہت وہی مطلب تو گن سہت میں رتی نہیں گن رہت میں. ایک بات یاد آ گئی بھائی آپ کھما کر دینا, سوئن جوتی جی مہاراج یہاں جاری تھی اس میں رہتے تھے تو ایک نے پرشن کیا کہ مہاراج کئی کئی ایسے ہیں کہ نرگن کی تو مہیما کرے نرگن کی پڑھائی بھی کرے اور سگن کی نندا کرے, تو بولے ایسے راکشس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے کہا دیکھو آپ وید بھی آپ نے بھوجائی کو گیان دیا ہے, وہ اسی طرح دیش کا راجا تھا اور وہ ایسا تھا اور وہ ایسا بھی بھگوان کو مارے گے تو سگن سے تو کرتے تھے بالکل تو سمجھتے تھے ایسے ساتھ سوچتے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں کہ کبھی میں کہتا ڈروں پر گور کہتے تھے میں کیا کروں کبھی کہتے جو ارے سادھو ہوتے نرمل انت کرنے والے سادھو کو کھستی ہو بھائی ہو گائے دو اور یہ بھگوان کی بات چاہے سگن کی ہو چاہے نرگن کی ہو نراکار کی ہو ساکار کی ہو کہ وہ مست ہو جاتے ہیں بھگوان کے بھجن میں ان کی بات چیت میں مست ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہوتے ہیں وہ مہاراج پریتنا کرمانا سنسد کے لیے پاپ نش ہو جاتے ہیں. انیک جنم سنسد انیک جنموں سے پہلے اس جنم میں سنسد ہے تو جاتی پرانگتی پبستی ہو جائے. اس واسطے بھگوان یوگ کی بات کہی, یوگ سے بھرشٹ ہونے سے بات ہوتی تھی. تپستی ہو یوگی جانی بھی متو دیکھا کرمی بھرشت آدھی وہ یوگی تسمات یوگی بات یوگی ہو جائے آسم کرتے یوگ یوگ تو بھگوان تم بھگوان آگے کہتے کچھ یوگی جوگی ہو جا مانو سمتا والا سمتم یوگ اچھے تو سمتا ہے تپس بھی ہے